लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी लोग मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति और हिंसा से पीड़ित लोगों के प्रति उदार एकात्मता प्रदर्शित करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यह ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना की गई है। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। वह उन्हें सीधे रास्ते ले गया और वे सब नगर तक पहुंचे। वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने प्यासों को पिलाया और भूखों को तृप्त किया। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 107वें भजन के 6 से लेकर 9 तक के पद। इन्हीं पदों की व्याख्या के साथ विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस भजन में भजनकार ने इस तथ्य पर बल दिया है कि वे लोग जिनका प्रभु ने उद्धार किया है, वे कदापि प्रभु की अनुकंपा को नहीं भूलें। वे यह नहीं भूलें कि प्रभु की कृपा के फल स्वरूप ही वे शत्रुओं के चंगुल से निकल सके। वे प्रभु ही थे जिन्होंने उन्हें पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देशों से एकत्र किया। श्रोताओ, आज भी ऐसा ही है। प्रभु ईश्वर हम सब मनुष्यों की सुधि लेते हैं। हमारी जीवन यात्रा भी कठिन है और कभी कभी यह जटिल हो उठती है। मुक्ति का कोई रास्ता नहीं सूझता, किंतु ईश नियमों पर अटल रहकर तथा प्रभु ईश्वर से प्रार्थना द्वारा हम इस स्थिति को पार कर सकते हैं। 107वां भजन हालांकि मरुभूमि के यात्रियों यानी कि मिस्र की गुलामी से मुक्त की गई इजरायली जाति के लोगों को संबोधित है, यह युग युगांतर के लोगों को आमंत्रित करता है कि वे प्रभु ईश्वर के वरदानों के लिए आभार व्यक्त करें तथा उनकी कृपा और अनुकंपा को कभी न भूलें। भजनकार इजरायली प्रजा को याद दिलाता है कि वह प्रतिज्ञात देश तक पहुंचने के लिए सीरिया के उजाड़ प्रदेश से गुजरी, रास्ते में कई बार भटक गई, प्यासी और भूखी रही, किंतु जब जब भी उसने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उसकी गुहार सुनी, उसकी प्यास बुझाई, उसे स्वर्ग से मन्ना बरसाकर तृप्त किया। यही नहीं, प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को रेतीली और जलती भूमि से निकालकर सीधे प्रतिज्ञात देश की ओर अग्रसर किया, जिससे कि वह प्रभु द्वारा उसके लिए निर्धारित शहर में निवास कर सके। यह शहर था यूदा का नगर यानी पवित्र जेरूसलम, जिसकी चर्चा भजनकार 107वें भजन में करता है। श्रोताओ, 107वें भजन के रचयिता ने इजरायली जाति और उसकी दुर्गम यात्रा का विवरण हमारे समक्ष प्रस्तुत कर ईश्वर की दया और कृपा की प्रकाशना की है, जो सदा सर्वदा तक बनी रहती है। आज जो लोग जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी 107वें भजन में प्रभु ईश्वर का आश्वासन निहित है, जिससे कि वे जिंदगी से हताश नहीं होवे, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखते हुए उनसे प्रार्थना करें और प्रभु के वरदानों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करें। इसी प्रकार वे संकटों को पार करने का साहस, शक्ति और संबल प्राप्त करेंगे।
तेरा धन्यवाद करूं मैं प्रभु, तेरा धन्यवाद,
तेरा धन्यवाद करूं मैं प्रभु, तेरा धन्यवाद।
जीवन के हर पल के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद,
जीवन के हर पल के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद।
तेरा धन्यवाद करूं मैं प्रभु, तेरा धन्यवाद,
तेरा धन्यवाद करूं मैं।
श्रोताओ, स्तोत्र ग्रंथ के 107वें भजन में वस्तुतः चार प्रकार के लोगों से अनुरोध है कि वे प्रभु को अपनी रक्षा के लिए धन्यवाद दें। भजन के पहले 9 पदों में मरुभूमि के यात्रियों से निवेदन किया गया है, 10 से लेकर 16 तक के पदों में कैदियों से, 17 से लेकर 22 तक के पदों में रोगियों से और 23 से लेकर 32 तक के पदों में समुद्र के यात्रियों से निवेदन है कि वे प्रभु के कार्यों को न भूलें, बल्कि प्रभु द्वारा मनुष्य के कल्याणार्थ संपादित कार्यों को याद करते हुए ईश्वर में अपने विश्वास को सुदृढ़ करें और संकट के क्षणों में उन्हीं की शरण जाएं। 107वें भजन के 10 से लेकर 16 तक के पदों में कैदियों से भजनकार अनुरोध करता है, कहता है, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। उसने उन्हें घोर कष्ट दिलाया, वे विचलित हुए, उनका कोई सहायक नहीं रहा। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला, उसने उनके बंधन तोड़ डाले। वे प्रभु को धन्यवाद दें उनके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने कांसे के द्वार तोड़ दिए और लोहे की अरगलाओं के टुकड़े टुकड़े कर डाले। भजनकार उक्त पदों में मनुष्य को स्मरण दिलाता है कि प्रभु की योजना अनुसार चलकर ही वह सुख शांति का जीवन बिता सकता है, अन्यथा वह अंधकार और मृत्यु की छाया में जीने के लिए बाध्य रहेगा। वह बेड़ियों में जकड़ा रहेगा जहां से उसे कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। इसके बावजूद, यानी कि ईश्वर की वाणी को अनसुना करने के बावजूद, यदि मनुष्य पश्चाताप कर प्रभु की ओर पुनः अभिमुख होगा तथा उनकी दुहाई देगा, तो प्रभु अवश्य उसकी प्रार्थना सुनेंगे और उसके बंधनों को तोड़ डालेंगे। भजनकार का कहना है कि प्रभु ईश्वर में विश्वास के बल पर कारावास के मजबूत कांसे के द्वार भी तोड़ दिए जाएंगे और लोहे की अरगलाओं के टुकड़े कर दिए जाएंगे। उक्त पदों में 16वें पद को दोहराया गया है। 8वें पद में भी भजनकार यही कहता है, वे प्रभु को धन्यवाद दें उनके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए। श्रोताओ, 107वें भजन में निहित इन पदों से कई भजनों की रचना हुई है। यह तथ्य कि प्रभु ईश्वर के आदर में हम इन गीतों और भजनों को प्रायः सांध वंदना के अवसरों पर गाया करते हैं, इसी बात का प्रमाण है कि कोई भी विशिष्ट बाइबल संबंधी ऐतिहासिक परिस्थिति शताब्दियों के अंतराल में मनुष्यों के हितार्थ उपलब्ध हो सकती है। 107वें भजन के 8वें, 15वें, 21वें और 31वें पदों में इन्हीं शब्दों को दोहराया गया है, वे प्रभु को धन्यवाद दें उनके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने कांसे के द्वार तोड़ दिए और लोहे की अरगलाओं के टुकड़े टुकड़े कर डाले।
तेरा धन्यवाद करूं मैं प्रभु, तेरा धन्यवाद,
तेरा धन्यवाद करूं मैं प्रभु, तेरा धन्यवाद।
जीवन
के हर पल के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद।
जीवन के हर पल के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद।
तेरा धन्यवाद करूं मैं प्रभु तेरा धन्यवाद।
तेरा धन्यवाद करूं मैं प्रभु तेरा
है तूने प्रभु तेरा धन्यवाद। रक्त बहाया तूने प्रभु तेरा धन्यवाद।
प्रेम किया है तूने प्रभु तेरा धन्यवाद। रक्त बहाया तूने प्रभु तेरा धन्यवाद।
तेरा धन्यवाद करूं मैं प्रभु तेरा धन्यवाद।
तेरा धन्यवाद करूं मैं प्रभु तेरा धन्यवाद।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 14 फरवरी को कृषि के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की 42वीं वार्षिक परिषद की बैठक के उद्घाटन के अवसर पर राज्य के प्रमुख, सरकार के मंत्री एवं नीति तथा विकास के नेताओं को संबोधित किया। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की 42वीं वार्षिक परिषद की बैठक रोम स्थित फाओ के मुख्यालय में 14 से 15 फरवरी को आयोजित की गई है। इस वर्ष इस सभा की विषय वस्तु है ग्रामीण नवाचार एवं उद्यमिता। IFAD ने 40 वर्षों तक ग्रामीण लोगों पर ध्यान दिया है। उनकी गरीबी कम करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, पोषण में सुधार लाने और सुधार में मजबूती लाने का प्रयास किया है। सन 1978 से ही उसने $20.4 बिलियन प्रदान किया है और परियोजनाओं के लिए कम ब्याज पर लोन करीब 480 मिलियन लोगों को दिया है। IFAD एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है एवं संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो रोम में स्थित है। संत पापा ने कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय फंड के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर IFAD के अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आप पृथ्वी पर सबसे गरीब लोगों की सेवा में संलग्न हैं। ऐसे लोग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे बड़े शहरों से दूर होते और उनकी स्थिति कष्टमय एवं दुखद होती है। संत पापा ने कहा, आपको याद करते हुए मेरे मन में दो शब्द आते हैं। पहला धन्यवाद। उन्होंने कहा कि वे ईश्वर को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वे विश्व में भूख एवं परेशानी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब कुछ ही लोगों के पास बहुत अधिक धन है, जबकि अधिकतर लोगों के पास बहुत कम साधन है। कई लोगों के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, जबकि कुछ लोग बहुत अधिक समृद्धि में जी रहे हैं। इस प्रकार असमानता का एक विकृत वर्तमान मानवता के भविष्य के लिए विनाशकारी है। संत पापा ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि वे वर्तमान की स्थिति के खिलाफ सोचते और कार्य करते हैं। उन्होंने उनके कार्यों की तुलना पेड़ की जड़ से की जो जमीन के अंदर छिपा हुआ होता है, किंतु वह पूरे पेड़ को पोषित करता है। संत पापा ने दूसरा शब्द अग्रसर बतलाया, अर्थात उन्होंने कहा कि कार्य को नवीकृत समर्पण के साथ जारी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिना थके, निराश हुए एवं त्यागे बिना उसे समुद्र में एक बूंद समझकर करते रहने की जरूरत है। इस तरह निराशावाद, मध्यस्थता एवं अभ्यस्तता के खतरे दूर हो जाते हैं और व्यक्ति दिन प्रतिदिन छोटे छोटे कामों में भी उत्साह पैदा कर सकता है। संत पापा ने कहा कि उत्साह शब्द बहुत सुंदर है। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम जो कार्य करते हैं उसमें ईश्वर को भी स्थान देना, क्योंकि ईश्वर भलाई करने से कभी नहीं थकते, वे हमेशा आशा प्रदान करते हैं। संत पापा ने कहा कि प्रार्थना हम में ऊर्जा उत्पन्न करता है, अतः हम प्रभु को अपने साथ काम करने के लिए आग्रह करें। उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को विश्व में गंभीर संकट भूख से लड़ने का प्रोत्साहन देते हुए उन पर ईश्वर के आशीष की कामना की। संत पापा फ्रांसिस ने 14 फरवरी को एक ट्वीट प्रसिद्ध कर विश्व में भूख की समस्या के समाधान हेतु आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, जो लोग प्रेम करते हैं वे अपनी कल्पना शक्ति को समाधान ढूंढने के लिए करते हैं, जबकि दूसरे लोग केवल समस्याओं को देखते हैं। जो लोग प्रेम करते हैं वे पूर्व निर्धारित विचारों या आम धारणाओं के अनुसार नहीं, बल्कि आवश्यकता के अनुसार एवं रचनात्मकता के साथ उनकी मदद करते हैं। इस बीच बुधवार 13 फरवरी को इटली अल्बानिया के लुमग्रोधम प्रांत की शतवर्षीय जयंती संत निकोला महागिरजा घर में मनाया गया, जहां ओरिएंटल कलीसिया के लिए गठित परमधम पीठे धम्म संघ के अध्यक्ष कार्डिनल लियोनार्डो सांद्री, अल्बानिया में नास्तिक अत्याचार के शिकार कार्डिनल एर्नेस्ट सिमोन, अल्बानिया के पियाना के धर्मदक्ष जॉर्जो तथा इटली एवं अल्बानिया के अन्य धर्मदक्षों ने बौद्ध धर्म विधि में भाग लिया। धर्म विधि के दौरान संत पापा फ्रांसिस के ताज संदेश को प्रस्तुत किया गया। लुमग्रो धर्म प्रांत की स्थापना 13 फरवरी 1919 को संत पापा बेनेडिक्ट 16वें द्वारा प्रेरित संविधान कैथोलिची फेडेलिस के साथ हुए थे। बौद्ध धर्म विधि का अनुष्ठान महाधर्मदर्श दोनातो ओलिवेरियो द्वारा किया गया, जहां अल्बानिया के राष्ट्रपति एलिर मेता भी उपस्थित थे। उन्होंने विश्वास का साक्ष्य देने एवं देश की परंपरा के प्रति निष्ठा के लिए आभार प्रकट किया। इस अवसर पर कलाबिया के कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन के अध्यक्षों ने भी शतवर्ष जयंती की शुभकामनाएं अर्पित की। यह समुदाय इटली के 5 महाधर्म प्रांतों में विभक्त है, जहां 44 पुरोहित, 22 धर्म बहने एवं कुल 30,000 विश्वासी हैं। यद्यपि समुदाय छोटा है, किंतु इसका एक महत्वपूर्ण इतिहास है तथा यह दक्षिण इटली में ख्रिस्ती एकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह लातिनी रीति एवं बिजेंटाइन रीति तथा पूर्व एवं पश्चिम के बीच मुलाकात स्थल है। संत पापा फ्रांसिस शुक्रवार के उदार कार्यों को जारी रखते हुए 15 फरवरी को प्रवासी फाउंडेशन अस्ताली सेंटर द्वारा संचालित रोम के साक्रोफानो भाईचारे ग्रीक का दौरा करेंगे और शाम 4 बजे पौत्र युखरिस्त समारोह का अनुष्ठान करेंगे। साक्रोफानो भाईचारे ग्रीक में प्रवासियों के आतिथ्य पर अपने निरंतर ध्यान को रेखांकित करने के लिए प्रवासी फाउंडेशन अस्ताली सेंटर ने 15 और 16 फरवरी को सेमिनार का आयोजन किया है। इस सेमिनार का उद्घाटन संत पापा फ्रांसिस के अगुवाई द्वारा पौत्र मिस्सा में किया जाएगा। संत पापा फ्रांसिस ने 3 साल पहले हजारों प्रवासियों के संकट को देखते हुए शरणार्थी परिवार का स्वागत करने के लिए पूरे यूरोप की पल्लियों, धार्मिक समुदायों, मठों एवं तीर्थस्थलों से अपील की थी। कई परिवारों और पल्लियों ने संत पापा की अपील का जवाब दिया और शरणार्थी परिवारों का स्वागत किया। 2 दिवसीय सेमिनार का उद्देश्य उन परिवारों, पल्लियों, धार्मिक स्थानों एवं अन्य संगठनों को एक साथ मिलाना है जो प्रवासी आतिथ्य में शामिल हैं। इस सेमिनार में वे एक दूसरे को जान पाएंगे और अपना अनुभव, विचारों, कठिनाइयों एवं परियोजनाओं का आदान प्रदान करेंगे। साथ ही साथ वे उन लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे जो अपनी उपलब्धता के साथ एक समावेशी संस्कृति के निर्माता के रूप में प्रवासियों के स्वागत हेतु साहसिक कदम उठाया है। इस बैठक में भाग लेने वालों के अनुभव इस बात की गवाही देते हैं कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वास्तव में संभव है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।